में सोच नहीं सकते हैं। अचानक आ रहे हैं पेपर और इतने बड़े बड़े पेपर आ जाते हैं। अभी दो दिन पहले मैं अभी सिक्किम की तरफ था तो वहां एक फोन आया मेरे को। एक हमारा बहुत बहुत स्नेही कुमार था, बहुत बाबा का लौली बच्चा, हमारी विंग का, ग्राम विकास विंग का सारा वेबसाइट वगैरह बनाया, आईटी विभाग में एक्सपर्ट था, बहुत बढ़िया उसका पूरी कंपनी चलती थी हैदराबाद में। और अचानक यहाँ से उसने अपना बिजनेस थोड़ा कम करके दुबई में खोला। अब दुबई में जाके बिजनेस किया, कुमार था, बीच बीच में घर आता था हैदराबाद, मम्मी ज्ञान में पक्की और उसकी बहन बड़ा सेंटर संभाल रही है हैदराबाद में। कुमार था, गया सेंटर पर रोज सुबह 4:30 बजे, 4 बजे वहां क्लास होता दुबई का, पहुंच जाता सबसे पहले। तो उस दिन क्लास में नहीं आया तो भाई बहनों को संकल्प चले, आज क्या हुआ, ये आया नहीं है, कहीं चला गया, क्या हुआ। तो पता लगाया, फोन किया तो 10-11 बजे दिन में पता चला घर में जो काम करने वाली आई, सफाई करने वाली, ताला लगा हुआ है। तो उसने झांक करके इधर उधर से पर्दों से खिड़कियों से देखा तो भाई साहब तो सोए हुए हैं, उठे ही नहीं है। तो उन्होंने फोन किया उस नौकरानी ने कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये भाई उठा ही नहीं है, कुछ गड़बड़ लगता है। जा करके ताला तोड़ा, देखा तो वो तो थे ही नहीं, शरीर छोड़ दिया लेटे लेटे। क्या हुआ, कैसे हुआ, समाचार आया। फिर उसका भाई एक अमेरिका में रहता था, वो आया उसकी बॉडी को लेके 3-4 दिन के बाद। इधर हम लोग 25 तारीख को दादी जी का स्मृति दिवस मना रहे थे और उधर उसका संस्कार हो रहा था। तो उसकी माँ से मेरी बात हुई, क्योंकि बहुत नजदीक का परिवार है। हमने कहा माँ का हाल क्या होगा, बैठी है, पूछूं तो बहुत उसकी मेरे से भी ज्यादा हिम्मत दिखाई दी बोलने में। कहती, भाई जी बाबा इतने दिन से हमको अचानक 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 कहता था, मुझे नहीं पता था मेरे से अचानक का पेपर लेगा, और इतना अचानक का पेपर बाबा ने लिया है, मुझे तो पास होके दिखाना है। मैं जरूर माता जी, बाबा साथ है, पास हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे अचानक के पेपर आ रहे हैं। तो ज्ञान योग की शक्ति ना हो तो क्या हाल होगा बताओ। ज्ञान योग की शक्ति है उस माँ के पास तो उस बात को सहन करके, बाबा साथ है, बाबा रक्षक है, उसको बहुत अंदर से उसके शब्दों से इतनी शक्ति मिल रही थी कि सचमुच बाबा ने कैसे शक्ति स्वरूपा बनाया है, नहीं तो माताएं तो रो रो के बेहाल हो जाए। तो वो परिवार का मैं समाचार 3-4 दिन कंटिन्यू सुनता रहा। तो आजकल कलयुग के अंदर परिस्थितियां, हिसाब किताब, पेपर्स, शरीर के संबंधों के, समाज के, सरकार के, प्रकृति के, भटकती हुई आत्माओं के, कितने लोग आ रहे हैं, और उन सब में मैं आत्मा सुरक्षित हूं, कितना ध्यान रखना पड़ेगा। सुरक्षा के इतने अच्छे गार्ड हैं सबके पास। सबसे अच्छा स्वरक्षा का साधन है सब आत्माओं की खूब दुआएं जमा करो, सबको इतना सुख दो, इतना साथ दो, मदद करो जो समय पर आपको उस समय पर वो दुआएं काम आ जाए। मेरी दादियों के सामने शरीर के पेपर आए और उन्होंने उस शरीर के पेपर को इतना हंसते हंसते पार किया, जो हम देख रहे हैं कि कुछ भी हुआ कभी भी उनके मुख से ये नहीं निकला मैं बीमार हूं। बीमारी शब्द उनके मुख पर नहीं आया, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, नहीं, बाबा साथ है, सबकी दुआएं साथ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो ये दुआएं उनके लिए स्वरक्षा का साधन बन गई। तो हम सब अपने साथ एक तो बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव शुद्ध संकल्प में रमण करने की आदत डालें। मैं बाबा की 3 बहुत गहरी बातें आपको सुनाता हूं। सदा अविनाशी भव का वरदान मिल जाए इस ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि चलते चलते कई बाबा के बच्चे पुराने होकर के भी डगमग हो जाते, स्थिति नीचे ऊपर हो जाती, इंटरेस्ट नहीं खत्म हो जाता। तो मैंने देखा है कि कारण तो कुछ होते हैं, कारण नहीं बताते वो लोग, लेकिन कारण ये होते हैं कहीं न कहीं कुछ न कुछ नेगेटिव देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उस पर चिंतन चढ़ जाता है या कोई उनको सुना देता, उसके कारण उनका उमंग उत्साह कम हो जाता, डाउन हो जाता। पहले आते हैं बाबा के बच्चे बनते हैं, बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, भगवान मिल गया, क्या चाहिए, सब कुछ पा लिया। फिर धीरे धीरे पुराने होते जाते, पुराने होते हैं संपर्क में, संबंध में समीप आते, घर को देखते, बहनों को देखते, सेंटर को देखते, यज्ञ को देखते, और कुछ ऐसी बातें जो कमी कमजोरी की अगर कोई ने सुना दी या नोट हो गई, तो वो जो ऊंची भावनाएं हैं वो डाउन हो जाती, और जब भावनाएं गिरती हैं तो फिर उसका उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। इसलिए आवश्यकता यही है कि हम सब एक शुद्ध संकल्पों का घेरा बनाएं, कोई भी नेगेटिव बात देखो सुनो उसको चिंतन में नहीं लाओ, ये हर सीन इसके अंदर कुछ न कुछ राज और कल्याण समाया हुआ है। अगर कोई गलत बात भी आपको दिखाई और सुनाई देती है तो उसके पीछे भी कुछ गहरा रहस्य है, कुछ कल्याण है, कुछ और आगे बाबा बढ़ाना चाहता है। इसलिए कभी भी उसमें क्यों क्या कैसे में उलझना नहीं। तो बहुत कई लोगों की सोचने की जो आदत है ना, वो बहुत डिस्टर्ब कर देती है, खुद को भी डिस्टर्ब करती है, और अगर किसी के आगे वर्णन कर दिया तो बात बहुत बड़ी बन जाती, फैल जाती, वातावरण में आ जाती। इसलिए बाबा कहता है इस समय सबसे बड़ी बीमारी एक चल रही है, वो है अधिक सोचने की। सोचने की बीमारी जो है ना, सोच सोच करके व्यक्ति अपने दिमाग को इतना भारी कर लेता है जो दूसरी बातें सोचने के लिए उसके पास शक्ति नहीं रहती। इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता है कि कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें जो मन पसंद नहीं है, श्रीमत के पसंद नहीं है, प्रभु पसंद नहीं है, और हो रही हैं और हमारे ही संगठन में हो जाए, तो भी बाबा कहता है बच्चे नथिंग न्यू, कुछ उसके पीछे राज है, कुछ उस आत्मा का हिसाब किताब चुकतो हो रहा है, इसलिए आप अपनी स्थिति को डगमग नहीं करो। आपके साथ सदैव वो सुरक्षा कवच है स्वचिंतन। स्वचिंतन आत्मा की उन्नति का साधन है, हमारा एक स्लोगन लिखा होता है स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। इसलिए कुछ भी ऐसी बात देखो सुनो तो उस चिंतन में, परपंच और पर चिंतन में नहीं जाना। बाबा कहता है ये समय बहुत अमूल्य है, ये संकल्प बहुत अमूल्य है, आपके शब्द बहुत अमूल्य है। इसलिए संकल्प, श्वास, शब्द, समय, इन चारों बातों पर इतना ध्यान दो, ये हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो, कैसी भी बातें हो, उसको मुझे व्यर्थ, साधारणता को, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देना, चेंज करो, उसी समय परिवर्तन करो जब बाबा बैठा है। कल्याणकारी संगम युग है, कल्याणकारी बाबा है और हम उसके बच्चे कल्याण के लिए निमित्त बने हुए हैं। ये सीन जो आई है इसमें भी कुछ कल्याण होगा, भले पर्दे के पीछे अकल्याण दिखाई दे रहा है, लेकिन ड्रामा का ज्ञान कहता है इसमें भी कुछ कल्याण है। ये ज्ञान आपके लिए आपके चिंतन को सुरक्षित रखेगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देगा। तो वर्तमान समय कलयुग के अंतिम सीन के अंदर सदा याक्के एक बात ध्यान रखना, अंत ऐसे सहज नहीं आएगी, अंत के लिए हर चीज अति में जाएगी, हर चीज अति में बहुत विशाल बड़े रूप में होगी, तब अंत होगा। कहते हैं ना जब पाप का फुल घड़ा भरता है तब फूटता है, बीच में नहीं फूटेगा। तो जब हर बात में अति आपको दिखाई दे रही है, स्वभाव संस्कार के टकराव हैं, विकारों का फुल फोर्स है, प्रकृति का फुल फोर्स है, कितनी रिहर्सल प्रकृति कर रही है, कितने लोग रिहर्सल कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, दुनिया की सफाई के लिए, विनाश के लिए तैयारी है और वो रिहर्सल है, और उस रिहर्सल में ही हम प्रश्नों में आ जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने बड़े बड़े महात्माएं आज क्या धंधा कर रहे हैं, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, देखो तो ऐसे लगता है सचमुच पाप का घड़ा एकदम भरने पर आ गया, अब फूटेगा, अब नहीं बचेगा। लेकिन उसके लिए घबराना नहीं, देख करके क्वेश्चंस में नहीं आना, इधर उधर की हलचल में नहीं आना। बाबा कहता है ऐसे समय पर आप अपने श्रेष्ठ शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से सकाश देने की सेवा करो। बहुत अच्छा है कि अगर हमारा एक बहुत अच्छा ओरा हो तो एक तो व्यर्थ और नेगेटिव बातों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, और दूसरा जो हमारे वाइब्रेशन निकलेंगे, सूक्ष्म सकाश निकलेगी, वो दूर दूर की आत्माओं को मदद करेगी, शक्ति देगी, शांति देगी, सहारा देगी। तो ये सेवा ऐसे अति के वातावरण में करने का समय है, और ऐसे समय में हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाएं, प्रश्नों में बह जाएं और कहें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो है वो है, तो फिर यही व्यर्थ संकल्प हमारे सूक्ष्म इस शरीर के आवरण को खंडित कर देते हैं। जो शक्तिशाली सूक्ष्म ओरा है पवित्र संकल्पों का, उसमें अटैक तभी माया करती है, भटकती हुई आत्माएं तभी करती हैं, जब इस ओरे को हमने सुरक्षित नहीं रखा। इसलिए हर ब्राह्मण आत्मा अगर इस कलयुग के तमोगुण में सुरक्षित रहना चाहती है तो हरेक को एक संकल्प सवेरे सवेरे लेना चाहिए कि मैं आत्मा इस शरीर में अभी अभी अवतरित हुई हूँ, श्रेष्ठ कार्य के लिए मुझे बाबा ने यहाँ भेजा है, और मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर आभा मंडल है, लाइट का एक ओरा है। जब आप चारपाई से उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, ऐसा ही अनुभव करो जैसे बाबा की ऊपर की लाइट परम धाम से डायरेक्ट मुझे आत्मा पर आ रही है, और वो लाइट एक बहुत सुंदर ओरा तैयार कर रही है, और वो चारों तरफ मेरे वो लाइट का शुद्ध पवित्र विचारों की लाइट का ओरा है, जिसको कोई भी अशुद्ध शक्तियां खंडित नहीं कर सकती। इतना शक्तिशाली ओरा बनाओ, चले जाओ कहीं पर भी न डर लगेगा, न भय लगेगा, कोई चिंता होगी, क्योंकि बाबा का कंबाइंड स्वरूप आपके साथ है। बाबा भी लाइट है और आपकी भी पवित्र लाइट है, कंबाइंड स्वरूप क्या है। कई बार बाबा कहता है कंबाइंड रहो, अगर मैं शक्तिशाली हूं तुम कमजोर भी हो तो भी आपकी सुरक्षा कर दूंगा मैं। जब बाबा इतना परम पवित्र लाइट है, शुद्ध लाइट है, तो हम आत्माएं भी उस लाइट के साथ कंबाइंड हो जाए। तो ऐसे कंबाइंड रहने का अभ्यास कर लेंगे तो स्वरक्षक बन जाएंगे। अब दूसरा बाबा कहता है ईश्वरक्षक के साथ साथ ईश्वरीय कुल की कुछ ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं नियमों का पालन करती हैं, दिनचर्या प्रमाण चलती हैं, अमृत वेले उठेंगी, स्नान पानी करेंगी, योग करेंगी, भोग लगाएंगी, क्लास करेंगी, सब कुछ करेंगी, हर नियम का पालन करेंगी, लेकिन केवल नियम पूर्वक चलती। नियम में बल है, बाबा कहते हैं बच्चे नियम पर चलने वाले की भी पूजा होती है। यहाँ पर हमारे दिलवाड़ा मंदिर में एक मूर्ति के ऊपर लिखा है नियमी नाथ, नियम पर चलने वाला नाथ बन गया, वो भी पूज्य बन गया, उसमें भी बल है। लेकिन नियम के साथ साथ जो हमारी एक मर्यादाएं हैं ईश्वरीय कुल की, वो बहुत दृढ़ता के साथ पालन कर, उसके लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता। मर्यादाओं के लिए कहते हैं लोक लाज कुल मर्यादाएं, उसमें लोक लाज भी आती है। आज कोई भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा का पालन करने के लिए कई बातों का सामना करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी मूल मर्यादा तो पवित्रता की है। हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति सब में पवित्रता की मनसा, वाचा, कर्मणा संपूर्णता आ जाए, और पवित्र इसकी संपूर्णता है कि उसमें व्यर्थ का नाम निशान खत्म हो जाए, व्यर्थ चिंतन भी न चले, व्यर्थ संकल्प भी उत्पन्न न हो। उसके लिए बहुत इस प्योरिटी की सब्जेक्ट को गहराई से समझना होगा। इस मर्यादा को जितना जिस ब्राह्मण आत्मा ने दृढ़ता के साथ पालन किया है वो माया के राज्य में सुरक्षित है, कुछ उसका कोई बिगाड़ नहीं। इसलिए बाबा हम सबको पूज्य पद प्राप्त कराने के लिए, ऊंचा पद दिलाने के लिए संगम युग पर यही कंगन बार बार बांधते हैं बच्चे मन वचन कर्म से, दृष्टि वृत्ति स्मृति से भी संपूर्ण पावन बनना, ये पहली ईश्वरीय कुल की मर्यादा है। दृष्टि की पवित्रता है आत्मा की स्मृति में रहना, ये आत्मा है। जब किसी से बात करते हैं तो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे शरीर तो सांप जैसा है, इसके बीच में आत्मा मणि है, भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा है। प्रैक्टिस करो, जब किसी से बात कर रहे हो तो आत्मा मणि को देखो, शरीर पर ध्यान न जाए, तो ये दृष्टि शुद्ध और पवित्र बन जाएगी, भाई भाई की बन जाएगी, हम आत्माएं पाठधारी हैं। ये मर्यादाएं अगर हमने पालन कर ली तो ये आत्मा बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त कर सकती, सहज योगी बन सकते। इसलिए मर्यादाओं की रक्षा करना, स्मृति के लिए मर्यादाएं हैं, बच्चे पास्ट की जो बातें हुई बीत गई उन बीतती बातों का चिंतन नहीं करो, फुल स्टॉप लगा दो, कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं करो, बीती का चिंतन नहीं करो, क्योंकि बीता हुआ इतिहास हो जाता है। आने वाले कल की चिंता नहीं करो क्योंकि वो रहस्य है, वर्तमान गिफ्ट के रूप में मिला है, इस गिफ्ट को अच्छी तरह से यूज करो, आज का दिन अच्छे से अच्छा मेरा बीते, बाबा के साथ साथ बीते, उस पर ध्यान दो तो कल तो अच्छा होना ही है। कल की क्यों चिंता करें, क्या होगा कैसे होगा, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, बाबा कहता है जब बाबा आपके साथ है, सर्वशक्तिमान आपका साथी है, तो कल कुछ हो ही गलत नहीं हो सकता, कैसे होगा गलत। इसलिए वर्तमान अच्छे से अच्छा बनाओ, वर्तमान का ही दर्पण भविष्य है, जो आज कुछ हम कर रहे हैं उसकी रिजल्ट हमको कल प्राप्त होगी ही। इसलिए अगर हमारा ध्यान वर्तमान को अच्छा बनाने पर है और वर्तमान में जो कायदे बाबा ने बनाए हैं ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं, उन पर अगर हम दृढ़ता से चलते हैं तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। तो ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं हैं, संघ की परहेज है, खान पान की शुद्धि है, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना है, और कार्य व्यवहार में आते नम्रता दिव्यता सरलता मधुरता, ये जो दिव्य गुण है वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर हो, छोटी छोटी बात में उत्तेजित न हो जाए, वो भी मर्यादा का उल्लंघन है, क्योंकि हम सबको बाबा शीतल काया वाला योगी बनाना चाहता है। अगर वो शीतल काया नहीं है, उत्तेजना वाली काया है, छोटी छोटी बातों में आवेश आ जाए, आवेग आ जाए, उत्तेजना आ जाए, तो हमारे मुख से जो वचन निकलते हैं वो कैसे होंगे। इसलिए तीन बातें जो आपको बताई, मन को इतना बिजी रखो ज्ञान और योग के चिंतन में जो एक सेकंड में मन मना भाव हो जाओ। ज्ञान और योग का, ज्ञान का अच्छा चिंतन है अच्छा ध्यान है तो बाबा में मन को टिकाना मेहनत नहीं है। इसलिए बाबा ने पहला एक संकल्प दिया, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। ये जो बाबा की श्रीमत मिली है इसको मर्यादा समझ करके पालन करना, ये हमारे लिए मर्यादा है। मन के संकल्प न ज्यादा इस देह के आकर्षण में जाएं, देह में है संभाल भी रहे हैं, समय पर उसको रेस्ट भी दे रहे हैं, भोजन भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं, स्वस्थ रहेगा तो हम सेवा कर सकेंगे, संभाल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम अटैच न हो जाएं, इतना अटैच न हो जाएं सारा दिन इसका ही ख्याल चलता है। इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, ये बाबा की पहली श्रीमत मर्यादा है। दूसरा बाबा कहता है गुण ग्राही बन करके रहना, सदा गुण ग्राही, हर आत्मा के अंदर कोई न कोई विशेषताएं भरी हुई हैं, इसलिए गुण रूपी मोती चुगना और मुख से सदा मोती ही निकालना। आज जितना भी कहीं भयभीत व्यक्ति होता है, शत्रु बना लेता है, उसका एक मूल कारण होता है उसका अपने बोल पर कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए बाबा हम सबको वाणी की भी मर्यादा बताते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो जितना जरूरी है उतना ही बोलो, अधिक नहीं बोलो। इसलिए वाणी में जो बोल निकले वो महावाक्य के रूप में निकले, ऐसे नहीं जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। हम सबको इस वाणी पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। और कर्म के लिए बाबा कहते हैं मर्यादा है, सदा ध्यान रखो, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। आज की मुरली में भी बाबा ने इशारा दिया है कि ध्यान रखना, मुझे कौन देख रहा है, मैं तो अकेले घर में रहती हूँ, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। लेकिन बाबा के बच्चे बन गए, ब्राह्मण कुलभूषण बन गए, हर एक बाबा का बच्चा इस विश्व के ग्लोब पर खड़ा हुआ है, सारी विश्व उसको देख रही है। अगर एक भी कुछ नीचे ऊपर करता है तो पूरे ब्राह्मण आत्माओं के जीवन चरित्र पर दाग आ सकता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी कर्म ना हो जो मुझे देखकर दूसरे लोगों के प्रश्न उठ जाएं। ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी चलता है क्या कि ब्राह्मण बीके कहलाने वाले भी ये करते हैं? आजकल तो इतना लोगों का ध्यान रहता है, आप कहीं जा रहे हो ट्रेन में, बस में, या कहीं पर भी खड़े भी हो, किसी होटल के सामने आप खड़े हो जाओ तो भी लोग कहते हैं क्या आप लोग यहाँ खाना शुरू कर दिया क्या, इतना ध्यान देते हैं। आपको अभी छूट मिल गई क्या, आपके यहाँ तो बड़े नियम थे। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे हजारों की नजर आपके ऊपर है, भले खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, लेकिन ऐसे स्थान पर जा रहे हो, खड़े हो, तो भी लोगों के संकल्प चलते हैं। इसलिए हम सबको सबकी नजरें देख रही हैं, बहुत दृढ़ता के साथ पालन करना, इसमें हमारी सुरक्षा है। आज जितने अटैक हो रहे हैं, मान लो आज कोई तंत्र मंत्र जंत्र कुछ भी करता है, कैसे करता है, कुछ न कुछ खिला देता है, खा लेते हैं अलबेलेपन में आकर के, कोई संतरे की फांकी खिला करके बेहोश कर देता, कोई बिस्कुट का टुकड़ा खिला के बेहोश कर देता, कोई ऐसी चीज दे करके खिलाया और उसको अपने वश कर लेता है, अधीन कर लेता है। तो ये जो जितने भी आजकल की विद्या है ना, लास्ट विद्या, भूत विद्या कहें, वो भूत विद्या जो है वो बहुत अटैक करती है जब हम अपने नियमों में अलबेले बनते हैं। अगर कोई दृढ़ता के साथ अपने नियमों का पालन करता है वो सब जगह चला जाए, वो सुरक्षित है, कुछ कोई नहीं कर सकता उसको, क्योंकि उसके साथ वो सुरक्षा का कवच, उसकी दृढ़ता का संकल्प है, मुझे नहीं खाना किसी के हाथ का, मैं क्यों खाऊं। अगर नाराज होगा थोड़े समय के लिए कोई बात नहीं, बना लेंगे, फिर मान जाएगा, समझ जाएगा। और बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तो चलो हम पकाया हुआ नहीं कुछ ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज फल है ले लिया थोड़ा सा, खुश कर दिया। लेकिन हमारे अगर नियम पक्के हैं तो ज्यादा फोर्स आजकल नहीं आता, जानते हैं ये लोग नहीं खाते, ये लोग ये नहीं मानते हैं, तो धीरे धीरे सब सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन लूज होंगे, क्या करूं, ये करना पड़ता है, ऐसे रहना पड़ता है, तो बाबा कहता भले रहो, फिर क्या करेगा, मना करेगा बाबा? कोई बाबा से पूछे कि बाबा ये करना पड़ता है, तो बाबा क्या कहेगा, नहीं करो, भले करो बच्चे, भले करो। क्योंकि बाबा ने तो देवता बनाने के लिए सब नियम बता दिए, ये दिव्य गुण संपन्न सर्वगुण संपन्न बनने वाली आत्मा के लिए ये नियम है, ये मर्यादाएं हैं, ये धारणाएं हैं। अगर कोई पालन करेगा तो सुरक्षित रहेगा, देवता पद प्राप्त करेगा, ऊंचा पद पाएगा, और नहीं तो फिर माया भी राज्य के अंदर, जो करना है करो। बाबा से अगर पूछोगे और बाबा उस समय मना कर दे, मान लो आज कोई कुमार बाबा के सामने जाए, कुमार बैठे यहाँ, थोड़ा कुमार हाथ उठाओ देखूं तो, बहुत कम है, चार पांच ही बैठे हैं सेवा में है। मान लो आज कोई कुमार जाए, कहे भाई जी हमारे मम्मी पापा अकेले हैं, मुझे कहते हैं शादी करनी पड़ेगी, अब मैं क्या करूं, तो क्या कहेंगे? बाबा से पूछे कोई तो बाबा क्या कहेगा, बच्चे कर लो कर लो कर लो, वो थोड़ी कहेगा नहीं करो। अगर मान लो उसको कह दे नहीं करो, और फिर वो जाके कर ले तो एक तो पहले की श्रीमत उल्लंघन हो रही है और दूसरी डायरेक्ट भगवान से पूछने के बाद उसने फिर कर लिया तो डबल पाप बन जाएगा। इसलिए बाबा तो रहम दिल है, वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा। वो जानता है कमजोर है तब तो पूछने आया है, अगर शक्तिशाली है तो बाबा कहता है बच्चे क्यों कर्म बंधन की रस्सियों में बंधते हो, अभी तो तोड़ने का समय है, जो बनाया है 84 जन्म में ही उनको खत्म करने का समय है, वापस चलने का समय है और तुम बंधन बांधने का पूछ रहे हो तो बाबा क्या राय देगा। इसलिए बाबा कहता बच्चे पूछ पूछ करके पूछ नहीं करो, ये खाना पड़ता है तो खाओ जा करके, कौन मना करता है, ये होना पड़ता है ऐसा करना पड़ता है। बाबा फिर युक्ति बताता है ऐसा चलो योग में बैठ के खा लो ऐसा कर लो, लेकिन जो कच्चे हैं जो दृढ़ नहीं है वही पूछते हैं। और दूसरे तो सोचते हैं मरेंगे मिटेंगे कुछ भी हो जाए हम तो ऐसे नियम पालन करें, तो हमारे जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं बनी हुई हैं अगर कोई दृढ़ता से पालन करे तो कहीं पर भी कोई भी आसुरी शक्तियां उस पर वार नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो शिक्षाएं हैं संगम पर ये शिक्षाएं ही तुम्हारी रक्षा कर रही है, और कोई रक्षक नहीं हमारा। लेकिन कोई अमृत वेले उठे बाबा की याद में बैठ जाए पावरफुल शक्तिशाली याद करके शक्तियां ले ले, फिर दिन की दिनचर्या बाबा के बताए हुए नियम प्रमाण वो शुरू करे, सवेरे सवेरे मुरली सुन के खूब अच्छा चिंतन ले ले, ज्ञान रत्नों से बुद्धि को भरपूर कर ले, फिर दिन की दिनचर्या में हर घंटे 1 मिनट इस देह से डिटैच होकर के अभ्यास करे, 1 मिनट सिर्फ। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल किया, फिर भोजन आया, भोजन बाबा की प्यार में बनाया और खाया, हर नियम और मर्यादा का अगर उसने पालन किया तो कोई भी आसुरी शक्तियां इस कलियुग की उसको कुछ भी नहीं कर सकती, बिगाड़ नहीं सकती। करके देखो, और जिन्होंने किया है पालन कर रहे हैं वो इतना मौज की जीवन जीते हैं, कुछ भी हो जाए कलयुग में उनका कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा हम सब बच्चों को सुरक्षा के लिए कहते हैं मर्यादाएं आपकी रक्षा कर रही हैं तो मर्यादाओं की रक्षा करो, तुम इनकी पालना करो, कोई भी मर्यादा खंडित ना हो, ये बाउंड्री है। हम कहते हैं ना सीता जी के आगे लक्ष्मण ने एक बाउंड्री खींच दी कि देखना कहीं भी असुर आ सकते हैं, ये जंगल में आप बैठती हो सुरक्षित रहने के लिए मैं एक रेखा खींच देता हूं, इसके बाहर नहीं निकलना। अब सीता कितना बड़ा त्याग करके गई, कहानी में कितना बड़ा त्याग उसका दिखाया है, राजा ठाट बाट सब छोड़ करके जंगल में गई, और जंगल में जाने के बाद उसको सोने हिरण ने आकर्षित किया, और सोने हिरण चलो आकर्षित किया, राम समझाया नहीं मानी जिद किया, फिर राम की आवाज को भी नहीं पहचान पाई कि राम की आवाज है या माया की आवाज है, कितनी एक के बाद एक भूल, एक के बाद एक मर्यादा का उल्लंघन। और फिर जब लक्ष्मण रेखा उसके आगे खींची तो साधु वेश में जो रावण खड़ा था उसको भी नहीं पहचान पाई, और उस रेखा का एक संकल्प से उल्लंघन, अंगूठा बाहर निकाला और सदा के लिए अशोक वाटिका में चले गए। अशोक वाटिका थोड़ी थी, वहां सारा दिन रोती रहती थी, शोक था या अशोक था। तो कहानी कितनी वंडरफुल, और संगम युग की हम लोगों की कहानियां हैं, ये कोई प्रैक्टिकल घटनाएं नहीं घटी हो तो एक कहानी बना दी गई, लेकिन संगम पर यही ब्राह्मण आत्माओं के साथ हो रहा है, सब कुछ छोड़ के आते हैं, सब त्याग कर देते हैं, सब बातों कहेंगे हमका हमारा कोई नहीं, और उसके बाद कोई थोड़ा नाम मान शान के पीछे सोने हिरण आकर्षित कर लेता, फिर उसके बाद राम मना भी करता नहीं करो नहीं करो, फिर भी नहीं मानते जिद, फिर कहता चलो चलो कोई बात नहीं, मैं लेख रेखा जो खींची मन को लक्ष्य दिया, और क्या लेखा लक्ष्य मन, मन को जो तुमको रेखा मिली है इसको उल्लंघन नहीं करना, लक्ष्य को पार नहीं करना, उसको भी नहीं किया। तो बाबा कहता है अगर कोई भी प्रकार से मन से भी श्रीमत का उल्लंघन हुआ मर्यादा को तोड़ा तो सदा ही शोक ही शोक है, फिर राम कुछ नहीं कर सकता, फिर उसको भी ढूंढना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हम सबको बहुत दृढ़ता के साथ ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं को पालन करना, इसके लिए बाबा कहता है मरेंगे जिएंगे हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए मरेंगे जिएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। कई परीक्षाएं आती हैं इस बातों में, लेकिन जो पक्के बाबा के बच्चे हैं वो इस ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं को बहुत सरलता के साथ दृढ़ता के साथ उसको पालन करते हैं। तो इसको हम सब कंगन के रूप में बांध लें। तो जब स्वरक्षक और मर्यादा रक्षक कोई बन जाता तो यज्ञ की रक्षा उसकी स्वतः होती, क्योंकि यज्ञ रक्षक तो बाबा खुद बैठा है, उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। लेकिन कई बार ब्राह्मण आत्माएं थोड़ी सी अलबेली होकर के मर्यादाओं का जब उल्लंघन करती, कहीं भी एक छोटी घटना घटती है तो पूरे यज्ञ के ऊपर कलंक आ जाता। बाबा है रक्षक, मदद करता है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के किसी भी प्रकार के गलत कर्म यज्ञ की बदनामी करा देते। यही गोबर पड़ रहा है लोगों का, और क्या कीचड़ पड़ेगा। कहते हैं जब संतों ने, बड़े ऋषि मुनियों ने यज्ञ रचे तो असल लोग उसमें गोबर डाल देते, कीचड़ा डाल देते, गंद डाल देते। तो उनकी सुरक्षा के लिए फिर राम को रखा, लक्ष्मण को रखा। तो बाबा कहता है बच्चे कि आज जब बाबा ने इतना बड़ा यज्ञ रचा है तो उस यज्ञ के अंदर असुरों के विघ्न पड़ते रहते हैं, जगह जगह पर कोई कुछ विरोध करता, कोई कुछ करता, लेकिन यज्ञ रक्षक बच्चे इस किले को बहुत मजबूत बना दे। आप समझो हम सब बाबा के बच्चों को स्नेही, सहयोगी और रक्षक। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी और यज्ञ रक्षक बनकर के मात पिता की दुआएं लेनी है, क्योंकि यज्ञ का पिता जो है, यज्ञ पिता, यज्ञ माता, वो प्रसन्न हो जाएं तो हमारी सब मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। मुझे तो ये अनुभव है, हमारे इस यज्ञ के माता पिता, हमारी फिर दादी दीदी, जिन्होंने बहुत प्यार से यज्ञ को आगे बढ़ाया, कितना प्यार से सब बच्चों को एक लेकर, एक मत में, एक सूत्र में पिरो करके, साथ रख करके, कहां से कहां यज्ञ को पहुंचाया। कितना छोटा सा था, जो पुराने हैं यहाँ बैठे हैं पुराने, कोई दादी दीदी के समय के, दीदी के समय के कौन है, दीदी मनमोहिनी के समय के, हाँ काफी बैठे हैं। बुरहानपुर तो बहुत पुराना सेंटर है। तो दीदी मनमोहिनी के समय यज्ञ क्या था, बहुत छोटा यज्ञ था, और वो छोटे यज्ञ में भी 100 लोग अगर आते थे, 125 लोग, तो हम लोगों को क्लास के बाहर बैठना पड़ता था, क्योंकि छोटा हाल ही था, हिस्ट्री हाल, और कमरे इतने कम थे। तो बाबा साकार में तो कहते थे बच्चों को, बोलो मेरी चारपाई के नीचे सो जाओ आके। बाबा तो बहुत प्यार से कहते, बच्चे क्या हर जाए, चारपाई के नीचे सो जाओ, बाबा है, सोया है। हम लोगों को दादी कहती थी, देखो अगर एडजस्ट कर सकते हो तो दरी बिछा दो, तुम भी सो और उनको भी सुला लो, पार्टी वालों को, और नहीं एडजस्ट कर सकते हो तो उनको अंदर कर दो, तुम लोग बाहर ब्रांडों में आ जाओ, क्यों मेहमान आए हैं। 100-150 आ गए तो दादियों को हम कहते, दादी बहुत बड़ी सीजन है, कम करो। रोटी बनाते थे, 500 रोटी भी अगर बनानी पड़े 200-250 लोगों के लिए, तो आंखें लाल लाल, क्योंकि वो लकड़ी पर, और गीली गीली लकड़ियों पर भोजन बनाते थे। गीता की याद है, थी है? ये थी ना, उस समय आती थी सेवा में, बहुत सारे ऐसे उस समय हम लोग सेवा करते थे, बहुत प्यार से दीदी दादी हम लोगों की पालना करती थी। यज्ञ के लिए उन्होंने एक एक पैसे को बचाया, एक भी पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। पांडव घर में आए हैं, हम लोग आ गए हैं, अरे मजदूरों की क्या जरूरत है, अरे वो तो भिखारी होते हैं, वो तो नहाते धोते नहीं है, एक हाल में वो झाड़ू लगाएंगे, कभी नहीं, आप लोगों को लगाना है। बाबा के कमरे में, क्लासरूम में, भंडारे में एक भी मजदूर नहीं हो जाता, वो पक्के। कैसे कैसे एक एक पैसे को बचा करके इतना विस्तार किया। ओम शांति भवन जब बना, क्या था यज्ञ, कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ये तो बना 75-74 में। बाबा दादियां यज्ञ के स्नेही बच्चों को ढूंढ लेती थी, कहां से मिल जाते थे पता नहीं, परख लेती थी, और जमीन लेके दिया, थोड़ा सा मकान बनाया, ये हमारा सुखधाम बना, तो कैसे बना, ज्ञान सरोवर तो बाद में बना, लेकिन सुखधाम बना, ये ओम शांति भवन बना। बाबा के एक छोटे बच्चे ने एक जमीन लेके दे दी, पहाड़ था, अब कैसे इस पहाड़ पर मकान बनाएंगे, पहाड़ तोड़ना बड़ा मुश्किल, और तोड़ने लगे तो गवर्नमेंट की नोटिस आ गई, तोड़ना नहीं, शोभा खत्म होती पहाड़ की। तो थोड़ा बहुत ऊपर लेवल करने के लिए तोड़ा पत्थर को, और वही पत्थर तोड़ करके और ऊपर दीवारें लगा दी, बाकी 3 मंजिल तक जो बनाया वो इसके आर्किटेक्ट कोई बाहर के नहीं, इसके इंजीनियर कोई बाहर के नहीं, हमारे भाई बहनों ने मिलकर के, मधुबन वालों ने कैचिया बनाई, चढ़ाई, फिर सब पूरा व्यवस्था। दो महीना पहले तो यहाँ दीवार भी नहीं थी ओम शांति भवन में। 83 में ओपनिंग होनी है फरवरी में, और नवंबर दिसंबर के अंदर एक दीवार भी नहीं है। कैसे कैंची पड़ेगी, कैसे सब छत पड़ेगी, कैसे सीलिंग होगी। लेकिन दादी का जो निश्चय और विश्वास था, जहां भी कोई यज्ञ स्नेही बच्चे थे, सहयोगी थे, कहती थी और आ जाते थे। एक सूरत में कनेक्ट वो था जिसके पास ये कंस्ट्रक्शन का सारा डिपार्टमेंट था, उसको फोन किया कि ऐसे ऐसे उद्घाटन की डेट फिक्स हो गई, आप आ सकते हो। पूरी गैंग लेके आ गया और फटाफट दीवाले चढ़ा दी। तो जितने बाबा के बच्चे थे सब ने यज्ञ के में रहने वाले, सेंटर्स पर रहने वाले, ज्ञान योग की क्लास नहीं किया, लेकिन कर्मा सेवा करने के लिए आते थे। और वो ओम शांति भवन जो बना एक डेढ़ साल के अंदर, आज देखो उसकी सेवाएं, उसका चुंबकीय आकर्षण जो आता है, कितना ज्ञान, कितना प्रभावित हो जाता उस स्थान। उसके बाद बाबा ने चेंज किया, ड्रामा चेंज हुआ और इतना बड़ा विस्तार हुआ दीदी के जाने के बाद, जो आज देखो सब कितना सुख सुविधाएं बाबा ने उपलब्ध करा दी, सब साधन भरपूर कर दिए, कोई कमी नहीं। आज स्टीम सिस्टम है, पहले एक टंकी पर पानी गर्म करके कमरों में पहुंचाते थे, आज रनिंग वाटर, गर्म पानी, ठंडा पानी सब है। भोजन स्टीम पर पक रहा है, सोलार पर पक रहा है, तो कितनी व्यवस्थाएं सब चेंज हुई। लेकिन कैसे शुरू हुआ यज्ञ, कितना उसका विस्तार हुआ, इन आंखों से 45 साल तो मैंने देखा। देखते देखते आज बाबा कहां से कहां हम सबको ले गया। लेकिन कैसे ले गया, सभी आप बाबा की यज्ञ स्नेही और सहयोगी बच्चों के सहयोग से। कोई ने पूछा नहीं तुम कितना करते हो, जिसने जिसको जितना करना कर रहे हैं, प्यार से तन भी लगा रहे हैं, मन भी लगा रहे हैं, धन भी लगा रहे हैं। ये तन मन धन यज्ञ की बड़ा वृद्धि का एक साधन है, लेकिन सुरक्षा के लिए मनसा की शक्ति चाहिए, मनसा की पवित्रता चाहिए, मनसा की शुद्धि चाहिए, अच्छे अच्छे संकल्प चाहिए। विघ्न तभी पड़ते हैं जब कोई आत्माएं नेगेटिव और साधारण संकल्प करते। अगर कोई सुनाए भी तो सुनना नहीं, यहां ऐसे होता, ऐसे होता, ये करता, वो कर, बाबा कहते हैं इसके लिए कान बंद कर दो, इसके लिए कान नहीं, इसमें अमृत जाना चाहिए, ये विष नहीं जाना चाहिए। तो अगर यज्ञ की सुरक्षा के लिए हम सब बाबा के बच्चे संकल्प कर लें, यज्ञ हमारा है, यज्ञ पिता हमसे प्रसन्न रहे, यज्ञ माता खुश रहे, तो सब मनोकामनाएं पूरी होंगी और बाबा हम सबको सब प्रकार से ऊंची स्थिति बनाने में मदद करेगा। लेकिन हम यज्ञ रक्षक बन करके, स्नेही सहयोगी बहुत है इस समय, लेकिन रक्षक कोई कोई है जो कभी भी साधारण संकल्प नहीं करते, सदा शुभ भावना रहती, बाबा का यज्ञ कैसे सुरक्षित रहे, कैसे आगे बढ़े, कैसे इसकी उन्नति हो, कैसे बाबा की प्रत्यक्षता हो। इसके लिए अपना कुछ नाम मान शान इसका त्याग भी करना पड़ता, कुछ छोड़ना भी पड़ता, कभी स्थान का भी त्याग करना पड़ता। बाबा कहता कुछ भी त्याग करना पड़ता, कुछ भी बलिदान करना पड़े, लेकिन यज्ञ हमारा सुरक्षित रहे, ये संकल्प जिस ब्राह्मण आत्मा के हैं उनको बाबा बहुत दुआएं देता है। हम सब ध्यान रखें यज्ञ पिता सदा प्रसन्न रहे, उसके लिए कोई भी ऐसा कर्म, ऐसा संकल्प, ऐसा बोल ना हो जो यज्ञ के ऊपर आंच आए। तो हम सब यज्ञ रक्षक बच्चे बन करके अपना तन मन धन भी सफल करें, क्योंकि सफल होगा तो भगवान को हम अपने रस्सी में बांध सकेंगे, क्योंकि उसके कार्य में हम मदद कर रहे हैं। नई दुनिया बनाने के लिए उसने रुद्र यज्ञ रचा, और उस रुद्र यज्ञ के अंदर मेरे तिल और जौ, स्थूल तिल और जौ नहीं, लेकिन सूक्ष्म में भी तिल और जौ, कुछ तन मन धन सफल होगा तो बाबा भी बंध जाएगा हमको उसका रिटर्न देने के लिए। इसलिए हम सब यज्ञ के बच्चे हैं, यज्ञ रक्षक बन करके जो ये कर सकते हैं, किसी से पूछना नहीं। कई लोग ऐसे पूछेंगे तुमने कितना किया, तुम क्या करते हो, अरे क्या जरूरत है, यहाँ पर तो बहुत करने वाले हैं। ऐसे ऐसे संकल्प देकर किसी के उमंग उत्साह को कोई बढ़ाते हैं और कोई गिराते हैं, ऐसा धंधा नहीं करना। जो जिसकी भावना है, जो सच्चे दिल से कर सकता है, बाबा का यज्ञ सदा आगे बढ़े, उन्नति हो, उसमें हम कैसे भी गुप्त रीति से सहयोग दे करके सफल भी करें और दूसरों का भी सफल कराएं। इतना ध्यान रखेंगे तो यज्ञ हमारा सदा आगे बढ़ता रहेगा। और जब तक सतयुगी दुनिया की स्थापना नहीं हुई, जब तक इस सारी दुनिया की, पुरानी दुनिया की सामग्री इसमें सहा नहीं हुई, तब तक ये यज्ञ चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, रोक नहीं सकता इस कारमा को कोई भी। तो बाबा हम सबको दिखा रहा है कैसे वृद्धि हो रही है और कैसे बाबा के अनेकानेक बच्चे आ रहे हैं, और बाबा गुप्त रीति से दादियों को भी अभी गुप्त कर रहा है, लेकिन इतना सब गुप्त रीति से वतन से बैठ करके यज्ञ को हैंडल कर रहा है। वो बाहर से नहीं दिखाई देता कोई है, लेकिन कोई गलत करके तो देख ले, ऊपर से कान खींच देगा। तो ऊपर से बैठ करके कंट्रोल कर रहा है, मैं तो उसकी जादूगरी देखता हूँ, जो जिससे कराना करा रहा है, अपने आप करा रहा है। तो ऊपर से बैठ करके आज ज्ञान सरोवर, शांतिवन, मधुबन, कितना बड़ा विशाल कार्य हो गया। पहले एक कॉन्फ्रेंस होती थी तो कितनी तैयारियां करनी पड़ती थी, अभी कंटिन्यू हर 15 दिन में एक कॉन्फ्रेंस, बड़े से बड़ी कॉन्फ्रेंस 4,000, 5,000, 6,000 लोगों की हो रही। कौन करा रहा है? कोई बड़े नहीं है, कोई निमित्त ऐसे नहीं है, कोई कहने वाले नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाले नहीं है, फिर भी सब अच्छे से अच्छा हो रहा है। तो कौन कर रहा है? इसलिए उस गुप्त शक्ति को पहचान जाओ, बाबा करा रहा है, सचमुच उसकी लीला चल रही है। और जब तक स्थापना का कार्य नहीं हुआ, जब तक प्रत्यक्षता नहीं हुई, तब तक ये यज्ञ बढ़ता ही रहेगा, जितना बनाएंगे उतना छोटा पड़ेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे जो कर सकते हो करते चलो, जितना सफल कर सकते हो कर लो, ज्यादा टेंशन में नहीं आना, बहुत मस्त स्थिति में रहो, मुक्त स्थिति में रहो, सफल सब कुछ हो, व्यर्थ कुछ न जाए, बस इसका ध्यान रखो। तो यज्ञ रक्षा होगी, यज्ञ बढ़ेगा और आप हम सभी बाबा की दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। तो दुआएं बाबा की मिले, परिवार की मिले, बड़ों के मिले, तो स्वरक्षा भी है, मर्यादा रक्षा भी है और यज्ञ रक्षा भी है। मर्यादाओं में भी वही चल सकता है जिसके साथ दुआएं हैं, नहीं तो माया बड़ी तेज है, वहां भी हैरान कर देती है। अगर दुआएं हैं तो आती है, माया पार हो जाते, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना कि हम सबको क्या करना है, सबकी दुआएं जमा करनी। ओके, ओम शांति।
धन्यवाद राजू भाई। महसूस हो रहा है कि अंतरात्मा में बहुत सारी शक्ति भर रही ही है ना। हाथ हिला के बताओ। कितनी अच्छी अच्छी गहरी बातों से हम सभी को श्रृंगार किया राजू भाई जी ने। और देखो आज एक क्लास आपने सुनी और मंगला दीदी सुना रहे थे कि आप अभी भट्टी कराने के लिए भी ब्रह्मपुर आ रहे हैं। देखो तो फिर से आपको लाभ प्राप्त होगा राजू भाई जी का। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद राजू भाई। तो अभी निमंत्रण को स्वीकार किया भाई जी ने, बहुत समय का निमंत्रण, तो फिर से आप सब रिफ्रेश होंगे।
हार हम किए जा रहे हैं। प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हूँ, पलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान।
Yeah.